मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस पर बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी दूसरी घटना पर बात करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह घटना भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी इम्पॉर्टेंट है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वे प्यारे स्टूडेंट जो 6 महीने से एटलीस्ट बहुत ही नियमित तरीके से अनुशासनबद्ध होकर के डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं वे समझ गए होंगे कि मैं किस घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने अभी एक आदेश निकाला है और वहाँ का जो एक आप कह लीजिए कि सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 था उसमें और जो दूसरे हैं उस पर हम लोग नहीं जाते, उसमें एक नया प्रावधान जोड़ा है। वो नया प्रावधान क्या है? देखिए, आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत वो अलग तरीके से ट्रीट होता था। उसी का एक प्रोविजन था 35A, 35A के तहत वहां की जो नागरिकता मिलनी चाहिए उसके लिए प्रोविजन स्टेट कर सकता था। और सोच करके देखिए कि हमारे किसी भी राज्य में ये व्यवस्था नहीं है कि आप भारत के नागरिक होंगे फिर दूसरे राज्य की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी जिस राज्य में आप रह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा था तो वहां की नागरिकता बड़ी सीमित कर दी गई थी। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ प्रोविजन जोड़े हैं और नागरिकता के यानी कि जम्मू कश्मीर की जो नागरिकता के जो प्रावधान है उसे विस्तृत कर दिया है और इसका जो वास्तविक संबंध है वो सच पूछिए तो महिलाओं के अधिकार से है। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले व्यवस्था ये थी कि जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता वाली कोई लड़की है, महिला है, उसने विवाह किया तो जम्मू कश्मीर के ही नागरिक से विवाह कर लिया तो उसके सारे अधिकार इंटैक्ट रहेंगे। कौन से अधिकार? जैसे वो वहाँ की नागरिक है, नागरिक होने के नाते वो वहाँ जायदाद, जमीन जायदाद खरीद सकती है, स्टेट सिविल सर्विस की जो यानी कि सरकारी जो नौकरियाँ होती हैं उनमें वो एपियर हो सकती है, जो चुनाव होते हैं पंचायत चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव उनमें वो भाग ले सकती है, सारे अधिकार उसको थे। और जिस लड़के से शादी की है चूंकि वो भी जम्मू कश्मीर का ही नागरिक है तो वो भी ले सकता था। अगर इस लड़की ने जम्मू कश्मीर से बाहर के किसी लड़के से शादी कर ली तो उसके ये सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे, सारे अधिकार, यहाँ तक कि उनके बच्चों के अधिकार भी समाप्त हो जाते थे। सीधी सी बात है कि जब उनके अधिकार खुद के समाप्त हो रहे हैं तो बच्चों के अधिकार का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जो व्यवस्था की गई है उसके तहत सीधे सीधे अब ये कर दिया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी नागरिक से विवाह करती है तो उसे बकायदे जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त होगी, बकायदे वो वहाँ की सरकारी नौकरी कर सकती है, वहाँ वो जमीन जायदाद खरीद सकते हैं और वहाँ के जो पंचायत नगर निगम और जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें मतदान कर सकते हैं। ये एक प्रोविज़न किया गया और याद रखिए कि ये केवल लड़की के लिए ही नहीं है बल्कि जिससे वो विवाह करेंगे जो बाद में बच्चे होंगे उन्हें भी वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से जो मेन स्ट्रीम है हमारी कंट्री के उसमें लाने की कोशिश की जा रही है। और आपको याद होगा अगर आप थोड़े से अधिक समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो अगस्त 2019 में बकायदे वहां अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था, 35A को भी समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से, और फिर जम्मू कश्मीर और जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए उन सब के बारे में आप जानते हैं लेकिन वो हमारा अभी यहाँ कंसर्न नहीं है। तो दोस्तों, अब वहाँ जम्मू कश्मीर में जो नागरिकता प्राप्त करने के जो टोटल प्रावधान थे वो पहले 6 थे और अब बढ़कर 7 हो गए हैं। उस 7 कौन कौन से प्रावधान हैं मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा प्रावधान है जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो विवाह को लेकर के है और इसका बहुत लोगों ने वेलकम भी किया है क्योंकि ये सीधे सीधे महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, अभी हो सकता है कि इस पर एडिटोरियल लिखे जाएं और जब भी आपको एडिटोरियल मिले तो आप इसे डेफिनेटली पढ़िएगा, उसमें से कुछ आपको हो सकता है कि और पॉइंट्स मिल जाएं इसके पक्ष और विपक्ष में। ताकि थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छे से हो सके, और जो स्टूडेंट अभी स्पेशली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए इस इशू पर अपना मत बना लेना कि अगर उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इससे सहमत हैं असहमत हैं, तो पहले से ही वो अपनी धारणा बना लें कि सहमति या असहमति की, और बाकायदे तार्किक रूप से बनाएं कि हाँ सहमत हैं तो क्यों हैं और सहमत नहीं हैं तो क्यों हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, वो है 97th अमेंडमेंट। जब भी हम इस तरह के अमेंडमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ऐसे फॉर्म में पढ़ते चल जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने अखबार में खबर पढ़ ली, इस पर एडिटोरियल भी आएंगे, आप एडिटोरियल पढ़ लेंगे, आज इकोनॉमिक टाइम्स ने उस पर एडिटोरियल लिखा भी है, तो आपके दिमाग में चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आएंगी। आपने पढ़ लिया उस समय आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं इसके बारे में जानता हूँ, मेरी पकड़ ठीक ठाक ही हो गई है, इतना सफिशियंट है, लेकिन बाद में आप भटक जाएंगे। इसलिए इस तरह के जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं जिन्हें आप एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, मैं इसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूँ, तो इस पर कुछ पॉइंट्स अलग अलग से नोट कर लेने चाहिए, चीज़ों को बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए, और ख़ासकर उन चीज़ों को जिनका उल्लेख न्यूज़ आइटम में किया जा रहा है या एडिटोरियल में किया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता बनी रहे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चाहे वो प्री हो जिससे आपके विकल्प गलत हो जाते हैं, या मेंस हो जहां आपको लगता तो है कि आप आंसर ठीक ठाक लिख करके आए, और सच ये है कि लिख करके भी आते हैं लेकिन मार्क्स उतने नहीं मिल पाते, उसका कारण अस्पष्टता ही होती है। क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी जांच रहा है, वो तो उन मुद्दों पर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर वह तैयारी करके आया है। आप जब एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो आप उन्हीं पर तो तैयारी करके गए नहीं, आपने तो पता नहीं कितनी तैयारियां की हैं और उनमें से कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो उसके दिमाग में बहुत स्पष्टता होती है, और जहां आपकी थोड़ी सी भी अस्पष्टता उसकी पकड़ में आ जाती है वो गड़बड़ा जाता है, वो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि अरे अरे ये क्या कहा जा रहा है, बस वहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिन्हें आप बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में उसके तथ्य बहुत स्पष्ट हों, जैसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो देखिए, ये जो संविधान संशोधन किया गया था ये किया गया 2011 में, लागू हुआ 2012 में, तो अखबारों में कहीं कहीं आपको 2011 पढ़ने को मिल जाता है, कहीं कहीं आपको 2012 पढ़ने को मिल जाता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न होगा ही, जबकि जो संशोधन किया गया है वो 2011 है, तो इसे हम संशोधन 2011 कहेंगे, लागू से कब किया जाता है उससे उसका संबंध नहीं होता, तो ये तो ये अस्पष्टता हो जाती है। दूसरा ये है कि जो सहकारिता का जो विषय था, कोऑपरेटिव का जो विषय था, ये स्टेट लिस्ट में था, राइट, ये राज्य सूची का विषय था, और सच पूछे तो यही इसके केंद्र में है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो वर्डिक्ट दिया है उसका संबंध इसी से ही है, तो ठीक है, आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो कि यह राज्य सूची का विषय था। यहाँ मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने कहा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे मैंने कह दिया कि ये इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आप भी बता देंगे कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि सहकारिता मंत्रालय अभी नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता अगर नया मंत्रालय बनाया गया है तो इसका मतलब है कि सरकार की दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण है सहकारिता, और केवल बनाया ही नहीं गया है, अगर आप इसे राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो यह मंत्रालय बाकायदे हमारे गृह मंत्री जी को दिया गया है, अमित शाह जी। तो एक तो वैसे ही गृह मंत्री बहुत पावरफुल होते हैं चाहे कोई भी हो, और फिर आप सब हम जानते हैं कि जो अमित शाह जी हैं वो काफ़ी पावरफुल लीडर हैं, उनके हाथ में दिया गया ये मंत्रालय, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो इसे बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो चूंकि सहकारिता मंत्रालय को इतना वेटेज दिया जा रहा है, इसलिए सहकारिता से संबंधित जो भी मामले होंगे, कानून होंगे, उन्हें परिवर्तन होंगे, वो आपके लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसी तरह से आपको अपने टॉपिक्स का चयन करना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि जो 97वां संविधान संशोधन किया गया उसमें प्रोविजन क्या किया गया था, मैं सामान्य तौर पर प्रोविजन की बात कर रहा हूं, उसमें कौन सी व्यवस्थाएं की गई थी। पहली व्यवस्था ये की गई कि बकायदे जैसे हमारे यहां एक फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको एसोसिएशन बनाने का राइट है, आप संघ बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप बकायदे असेंबल हो सकते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, है ना, मीटिंग कर सकते हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव भी यही है ना कि कुछ लोग, चाहे वो किसान हों, चाहे दुग्ध उत्पादन करने वाले हों, कोई भी हों, वो आपस में मिलकर के एक संगठन बना रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग करते हैं। तो इसी के बिल्कुल एट पार बकायदे इसे एक तरह से फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया कोऑपरेटिव, कि आपको ये अधिकार है कि आप कोऑपरेटिव बनाएं। एक तो ये कर दिया गया, चलिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी व्यवस्था की कि इसे बकायदे डायरेक्टिव, हमारे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें डाल दिया गया। और डालने के बाद राज्यों से ये कहा गया कि भाई आप अपने यहाँ ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसको एनकरेज करने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि वो तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्यों लाए गए हैं, आप जानते हैं। चलिए भी ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया। इसके बाद फिर एक काम और किया गया, देखिए वो क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। उसमें बकायदे संविधान में एक भाग जोड़ा गया, मैं अभी नंबर नहीं बता रहा हूं, मैंने चीजें फिर उलझ जाती, आप देख लीजिएगा। बकायदे दिया है कि फंडामेंटल राइट्स में जब शामिल किया गया है तो उसका अनुच्छेद क्या है, इसके बाद जो आपके डायरेक्टिव और प्रिंसिपल में शामिल किया गया है उसका अनुच्छेद क्या है, और जो मैं अभी बात कह रहा हूँ कि जो जोड़ा गया वो क्या है 9B, आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैं जानबूझ करके उसे यहाँ नहीं बता रहा हूँ। और उसके लिए फिर इस अनुच्छेद के अंतर्गत बकायदे एक नियमावली दी गई, कुछ नियम बनाए गए, एक सेट ऑफ नॉर्म्स आप कह लीजिए बनाए गए, कि जो राज्य हैं जो नियम और कानून बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, इस पैरामीटर पर बनाएंगे। तो अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। पहली बात कि जब 2011 में ये कानून बनाया गया तो केंद्र सरकार बकायदे फिर गुजरात हाई कोर्ट में लोग गए, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, इसलिए क्योंकि ये राज्य सूची का विषय था, और आप जानते हैं कि अगर राज्य सूची के विषय के बारे में केंद्र कोई कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, तो जब बकायदे संसद उसे पारित कर देती है तो उसे आधे, कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेना होता है जो केंद्र ने नहीं लिया। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो गलत था, लेना चाहिए था आधे राज्यों की सहमति जो नहीं ली गई, तो असंवैधानिक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा है कि जो प्रोसीजर था वो ठीक नहीं था। अब दूसरा ये है कि जो जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र सरकार ने नियमावली प्रोवाइड कर दिया, सेट ऑफ नॉर्म्स प्रोवाइड कर दिया, तो ये एक प्रकार से राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून में हस्तक्षेप हो गया। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, और उसने इस संविधान संशोधन को ही निरस्त कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही इसके बारे में डिसीजन दिया है, बस दैट्स ऑल। तो उसके डिसीजन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, जो संविधान संशोधन किया गया है ये तो गलत नहीं है, इसकी प्रक्रिया ठीक से नहीं अपनाई गई है, तो केंद्र को चाहिए कि वो बकायदे आधे से अधिक राज्यों की सहमति ले ले, लेकिन इसमें जो 9B जोड़ा गया है वो गलत है। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो 9B है, जिसमें सेट ऑफ नॉर्म्स है, केवल उसको ही हटाया गया है, और बाकी जो संविधान संशोधन किया गया है उसको इनवैलिड नहीं किया गया है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य विषय के बारे में बातें, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, उजैर खान इस्लाम नगर उत्तर प्रदेश से, मुकेश गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, तान्या रावत और साहिल गवई अकोला महाराष्ट्र से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।